कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से देश के शासक हैं और आप एक सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी सीमाओं पर दो बहुत बड़ी और खूंखार दुश्मन सेनाएं आकर खड़ी हो गई हैं।
बाप रे, ये तो मतलब किसी भी राजा के लिए एक बुरे सपने जैसा है।
हाँ बिल्कुल, और वे सिर्फ आप पर हमला ही नहीं करना चाहती, बल्कि उनका इरादा आपको गद्दी से हटाकर आपके ही किसी विरोधी को राजा बनाने का है। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी?
मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में कोई भी घबरा जाएगा,
है ना? क्या आप शांत रहकर कोई तार्किक फैसला लेंगे, या फिर आप घबराहट में किसी ऐसी तीसरी और भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा ताकत से हाथ मिला लेंगे जो अंत में आप ही को निगल जाए?
देखिए, जब इंसान अपनी जान को खतरे में देखता है ना, तो उसकी सोचने समझने की सारी क्षमता जैसे काम करना बंद कर देती है। वो सिर्फ उस पल में खुद को बचाने का कोई भी अंधा रास्ता खोजता है।
एकदम सही कहा आपने, और आज की इस विस्तृत चर्चा का केंद्र बिंदु भी कुछ ऐसा ही है। हम इस बात की गहराई में उतरने वाले हैं कि जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो डर और विश्वास के बीच हमारे भीतर क्या द्वंद्व चलता है।
ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है।
तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो डॉक्टर जॉन ओसवाल्ड द्वारा यशाया ग्रंथ के अध्याय 7 और 8 पर दिया गया एक बेहद दिलचस्प व्याख्यान है। इस चर्चा के जरिए हम ये समझेंगे कि जब हमारी जिंदगी में सब कुछ बिखर रहा होता है तो क्या हम अपनी बुद्धिमानी और किसी तथाकथित बैकअप प्लान पर भरोसा करते हैं या फिर उस परम शक्ति पर।
हाँ, और इस पूरी चर्चा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें दिखाती है कि इंसानी दिमाग और इसका डरने का तरीका सदियों से जरा भी नहीं बदला है। मतलब आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां हर तरफ से सूचनाओं की बमबारी हो रही है।
हाँ बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया।
सही कहा, हम हर घंटे ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं, शेयर बाजार गिरने की खबरें पढ़ते हैं और भविष्य को लेकर लगातार एक चिंता में डूबे रहते हैं। हमें लगता है कि ये आधुनिक युग की समस्या है।
लेकिन ऐसा है नहीं ना?
बिल्कुल नहीं। आज से लगभग 2700 साल पहले, मतलब 735 ईसा पूर्व में, एक राजा बिल्कुल इसी तरह की सूचनाओं के बोझ और राजनीतिक दहशत से गुजर रहा था। वो डर के इस कदर वशीभूत था कि उसे सही और गलत के बीच का फर्क ही नजर आना बंद हो गया था।
तो चलिए उस कहानी की जमीन तैयार करते हैं। हम 735 ईसा पूर्व के मध्य पूर्व में हैं। असीरिया का साम्राज्य उस वक्त दुनिया की सबसे भयानक और तेजी से बढ़ती हुई ताकत था।
हाँ, एक तरह से वे उस समय के सबसे बड़े महाबली थे।
आप उन्हें उस समय का सबसे क्रूर और खूंखार सैन्य बल मान सकते हैं, जिनका काम ही छोटे देशों को कुचलना और वहां आतंक फैलाना था। तो असीरिया की सेना मिस्र की तरफ अपना कब्जा बढ़ा रही थी। इस भयंकर तूफान को अपनी तरफ आता देख इसराइल और सीरिया के राजाओं ने घबराकर एक गठबंधन बना लिया। उन्होंने यहूदा के राजा अहाद से संपर्क किया और उस पर भारी दबाव डाला कि वो भी इस गठबंधन में शामिल हो जाए ताकि वे सब मिलकर असीरिया का सामना कर सके।
और देखिए, ये कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था जिस पर अहाज आराम से बैठकर विचार कर सकता था।
मतलब कोई चॉइस नहीं थी उसके पास?
बिल्कुल नहीं। इसराइल और सीरिया ने साफ कर दिया था कि ये आमंत्रण नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। उन्होंने अहाद से कहा कि यदि वो अपनी सेना लेकर उनके साथ नहीं जुड़ा तो असीरिया से लड़ने से पहले वे दोनों मिलकर यहूदा पर ही हमला कर देंगे।
अरे बाप रे।
उनका मकसद अहाज को गद्दी से हटाना और ताबेल नाम के एक व्यक्ति को राजा बनाना था, जो उनके इशारों पर नाचने वाला बस एक कठपुतली शासक होता।
ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य असीरिया है जो किसी को नहीं बख्शता, और दूसरी तरफ आपके अपने पड़ोसी देश हैं जो आपकी पीठ पे छुरा घोंपने को तैयार खड़े हैं।
अहाज की हालत तो ऐसी हो गई होगी कि वो रातों को सो नहीं पाता होगा।
हाँ, इस स्थिति को अगर मैं आज के हिसाब से समझाऊं तो ये वैसा ही है जैसे तीन चूहे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हों और उनमें से एक चूहा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भूखी बिल्ली को ही काम पर रख ले।
अरे वाह, ये उपमा तो बहुत ही सटीक है।
है ना? क्योंकि अहाज ने ठीक यही किया। उसने अपनी सेना खड़ी करने या ईश्वर से मदद मांगने के बजाय यहूदा के खजाने से बेहिसाब दौलत निकाली और उसे सीधे असीरिया के राजा तिग्लत-पिलेसेर को रिश्वत के तौर पर भेज दिया।
मतलब उसने एक तरह से दुनिया के सबसे बड़े माफिया डॉन को पैसे देकर कहा कि कृपया आप आकर मेरे इन दो छोटे पड़ोसियों को खत्म कर दीजिए,
जो कि बहुत ही बेवकूफी भरा फैसला था।
बिल्कुल। और ये फैसला कितना मूर्खतापूर्ण था, ये समझने के लिए हमें थोड़ा तिग्लत-पिलेसेर के नजरिए से सोचना होगा। डॉक्टर ओसवाल्ड इस घटना का बहुत ही सजीव चित्रण करते हैं।
हाँ, वो इंस्टेंट रिप्ले वाला हिस्सा ना।
हाँ, वे कहते हैं कि कल्पना कीजिए अगर उस समय स्वर्ग में कोई इंस्टेंट रीप्ले या वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होती तो हम असीरिया के राजा का चेहरा देख पाते। तिग्लत-पिलेसर तो वैसे भी इसराइल और सीरिया पर हमला करने की योजना बना ही रहा था क्योंकि वे उसके रास्ते में आ रहे थे।
अच्छा, मतलब अहाज ने उसे उस काम के लिए पैसे दे दिए जो वो मुफ्त में करने ही वाला था।
बिल्कुल, डॉक्टर ओसवाल्ट कहते हैं कि तिग्लत-पिलेसर ने शायद अपने दरबारियों से हंसते हुए कहा होगा कि जल्दी से इस बेवकूफ राजा अहाज का खजाना अपने कब्जे में ले लो इससे पहले कि उसे एहसास हो कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है।
हे भगवान,
अहाज को लगा कि उसने एक बहुत ही कूटनीतिक और चतुर चाल चली है। उसे लगा कि वो हालात को नियंत्रित कर रहा है,
लेकिन असल में वो खुद अपने जाल में फंस रहा था।
हाँ, असल में डर के कारण लिए गए फैसले इंसान की तार्किक क्षमता को अंधा कर देते हैं। जब हम डरते हैं तो हम अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए उसी चीज को ताकत दे बैठते हैं जो अंततः हमारा विनाश करने वाली होती है।
ये बात तो आज के समय पर भी लागू होती है।
बिल्कुल होती है। आज भी हम देखते हैं कि लोग आर्थिक असुरक्षा के डर से शेयर बाजार में गलत समय पर पैसे लगा देते हैं या घबराहट में ऐसे फैसले लेते हैं जो उनका और ज्यादा नुकसान करते हैं।
ये डर का मनोविज्ञान बहुत ही अजीब है यार। अब देखिए, अहाज ने अपना ये तथाकथित मास्टर प्लान लागू कर दिया है। उसने खजाना खाली करके रिश्वत भेज दी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से असली पेच शुरू होता है। भगवान अपने नबी यशाया को राजा अहाज से मिलने भेजते हैं और ये मुलाकात यरूशलेम के ऊपरी कुंड के पास होती है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, अहाज वहां शायद इसलिए गया होगा ताकि वो देख सके कि अगर शहर की घेराबंदी हो जाती है तो किले के अंदर पानी की आपूर्ति कितने दिनों तक चल पाएगी।
हाँ, वो पूरी तरह से एक इंजीनियर और रणनीतिकार की तरह सोच रहा था। वो अपनी भौतिक सुरक्षा का मुआयना कर रहा था,
लेकिन आध्यात्मिक सुरक्षा भूल गया।
बिल्कुल, लेकिन भगवान यशाया को वहाँ अकेले नहीं भेजते। भगवान उन्हें आदेश देते हैं कि वे अपने बेटे को भी साथ ले जाएं। और इस बेटे का नाम कोई आम नाम नहीं है, उसका नाम है शेर याशुब, जिसका हिब्रू भाषा में अर्थ होता है केवल एक अवशेष वापस आएगा या केवल कुछ ही लोग बचेंगे,
जो कि एक बहुत ही डरावना संदेश है।
हाँ, यशाया वहाँ जाकर अहाज को शांत होने को कहते हैं। वे भगवान का संदेश देते हैं कि जिन दो पड़ोसी राजाओं से अहाज थर-थर कांप रहा है, वे दरअसल सिर्फ धुआं देते हुए लकड़ियों के टुकड़े हैं।
मतलब उनकी आग बुझ चुकी है।
हाँ, उनकी आग बुझ चुकी है, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
रुकिए, मुझे यहाँ एक गंभीर उलझन हो रही है, मैं इस पर आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा।
हाँ, पूछिए।
अगर यशाया के बेटे का नाम ही शेर याशूब ले, जो हर वक्त ये घोषणा कर रहा है कि केवल एक अवशेष वापस आएगा, यानी ज्यादातर लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचेगा, तो क्या यह साबित नहीं करता कि खेल पहले से ही तय था?
ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है,
है ना? अगर भगवान को पहले से सब पता है कि विनाश होना ही है, तो अहाज के पास विकल्प ही कहाँ था? क्या ये पूरी मुलाकात सिर्फ एक दिखावा नहीं थी?
ये धर्मशास्त्र और दर्शन का एक बहुत ही गहरा सवाल है जो अक्सर लोगों को परेशान करता है,
कि ईश्वर का भविष्य जानना और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा के बीच क्या तालमेल है।
हाँ, बिल्कुल वही। डॉक्टर ओसवाल्ट इसे बहुत ही तार्किक ढंग से स्पष्ट करते हैं। वे समझाते हैं कि यशाया का बेटा वहाँ भविष्यवाणियों का कोई अपरिवर्तनीय पत्थर का लेख नहीं था, वो एक जीवंत वस्तुपाठ था, एक चेतावनी था।
अच्छा,
देखिए, भगवान निश्चित रूप से जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन उनका यह जानना मनुष्य को उसके फैसलों के लिए जवाबदेह होने से मुक्त नहीं करता।
इसका मतलब भगवान अहाज को ये बता रहे थे कि विनाश की भारी संभावना है, लेकिन वो अभी भी उसे टाल सकता था।
एकदम सही। पूर्व ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि भगवान ने अहाज से उसकी सोचने समझने की क्षमता छीन ली थी। अगर अहाज उस वक्त अपना हट छोड़ देता और भगवान पर विश्वास करता तो वो खुद उस बचने वाले अवशेष का हिस्सा बन सकता था।
समझ गया।
भगवान उसे एक बहुत बड़ा मौका देते हैं। वे अहाज से कहते हैं कि वो अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए कोई भी चिन्ह या चमत्कार मांग ले। वो स्वर्ग की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक कुछ भी मांग सकता था। ये एक ब्लैंक चेक की तरह था।
हाँ, और यहाँ अहाज के जो जवाब देता है वो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। कोई भी सामान्य इंसान जो इतने बड़े संकट में हो, तुरंत कहता कि ठीक है, आसमान से आग बरसाकर मेरे दुश्मनों को भस्म कर दो।
बिल्कुल, कोई भी यही मांगता।
लेकिन अहाज कहता है, मैं भगवान की परीक्षा नहीं लूंगा। मतलब वो कितनी विनम्रता और पवित्रता का दिखावा करता है। कोई अगर ये संवाद सुने तो उसे लगेगा कि अहाज तो बहुत ही धर्मपरायण इंसान है।
बाहर से तो ऐसा ही लगता है।
लेकिन असल में वो इतना शातिर क्यों बन रहा था? उसने ये चिन्ह ठुकराया ही क्यों?
क्योंकि अहाज पहले ही असीरिया को रिश्वत भेज चुका था। उसने अपना दाव खेल लिया था। अहाज को अच्छी तरह पता था कि अगर उसने भगवान से कोई चिन्ह मांगा और भगवान ने सच में कोई चमत्कार कर दिखाया तो अहाज नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भगवान के प्रति जवाबदेह हो जाएगा।
ओहो, और फिर उसे असीरिया से अपना गठबंधन तोड़ना पड़ता?
बिल्कुल, उसकी वो जो तथाकथित पवित्रता थी वो असल में भगवान से बचने की एक ढाल थी।
ये तो बहुत ही गहरी बात है। यानी वो अपनी असुरक्षा और अपने अविश्वास को एक बहुत ही पवित्र धार्मिक चादर से ढकने की कोशिश कर रहा था।
हाँ, और आज के समय में भी हम ऐसा बहुत देखते हैं, है ना?
एकदम सही कह रही हैं आप। लोग कभी कभी बहुत ज्यादा दार्शनिक या सकारात्मक बातें करने लगते हैं, लेकिन असल में वे अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों या अपने गहरे डर का सामना करने से भाग रहे होते हैं।
इससे आप आधुनिक मनोविज्ञान में टॉक्सिक पॉजिटिविटी या झूठी नैतिकता कह सकते हैं। इंसान अक्सर भगवान का नाम या धर्म का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसे अपने बनाए हुए झूठे सुरक्षा जालों से बाहर न निकलना पड़े।
अहाज को चमत्कार चाहिए ही नहीं था।
नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका अपना बैंक बैलेंस और उसकी राजनीतिक चालें उसे बचा लेंगे। भगवान पर निर्भर होने का मतलब है नियंत्रण छोड़ना, और अहाज अपना नियंत्रण छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था।
अहाज की ये चालाकी उस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी, ये आगे की घटना से पता चलता है। चूंकि अहाज ने अपनी तरफ से कोई चिन्ह मांगने से साफ इनकार कर दिया, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम नहीं मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक ऐसा चिन्ह दूंगा जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी।
हाँ, और वो चिन्ह था इम्मैनुअल।
ये एक ऐसा शब्द है जिसे आज हम बहुत सी जगहों पर सुनते हैं।
बिल्कुल, इम्मैनुअल का शाब्दिक अर्थ है भगवान हमारे साथ हैं। इस भविष्यवाणी में जिस मूल हिब्रू शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो था अल्मा। डॉक्टर ऑज़वाल्ट बताते हैं कि इस शब्द का सटीक अर्थ होता है एक युवती जो विवाह के योग्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भविष्यवाणी की पूर्ति दो अलग अलग कालखंडों में होने वाली थी। इसका एक तात्कालिक अर्थ था और एक दूरगामी अर्थ।
तो अहाज के समय में इसका तात्कालिक अर्थ कैसे पूरा हुआ?
भगवान अहाज से कहते हैं कि एक युवती गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी, और यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है उस बच्चे के विकास का समय।
अच्छा, समय कैसे?
भविष्यवाणी ये थी कि इससे पहले कि वो बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि वो नैतिक रूप से सही और गलत की पहचान कर सके,
यानी जब तक वो 12 या 13 साल का होगा,
हाँ, तब तक वे दोनों दुश्मन देश जिनसे अहाज कांप रहा है पूरी तरह से बंजर और तबाह हो जाएंगे।
यानी भगवान ने एक बच्चे के बड़े होने की प्रक्रिया को एक टिक टिक करती घड़ी या टाइमर की तरह इस्तेमाल किया।
बिल्कुल, भगवान अहाज को ये समझा रहे थे कि जिस संकट को देखकर वो इतना घबराया हुआ है उसकी उम्र केवल एक दशक के आसपास है। 12-13 साल में वे दोनों दुश्मन नक्शे से मिट जाएंगे।
लेकिन अहाज ने तो जल्दबाजी कर ली।
हाँ, अहाज ने उस छोटी सी अवधि के डर से असीरिया के साथ जो सौदा किया है वो यहूदा के लिए एक स्थायी बर्बादी लेकर आएगा। ऐतिहासिक रूप से ये एकदम सच साबित हुआ। 732 ईसा पूर्व में दमिश्क गिरा और 722 ईसा पूर्व में समारिया भी नष्ट हो गया। वे दुश्मन सच में खत्म हो गए।
और इस शब्द का जो दूरगामी अर्थ है जिसे हम आज ज्यादातर जानते हैं,
जी,
जब कई सदियों बाद इस हिब्रू ग्रंथ का यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया तो अनुवादकों को ये समझ आ गया था कि इम्मैनुअल की अंतिम और सबसे बड़ी पूर्ति अभी बाकी है। इसलिए उन्होंने अल्मा शब्द का अनुवाद एक ऐसे यूनानी शब्द से किया जिसका स्पष्ट अर्थ होता है कुंवारी। ये एक सीधा इशारा था उस अंतिम सत्य की ओर, जब ईश्वर सचमुच भौतिक रूप से मनुष्य के बीच जन्म लेने वाले थे। अब यहां मुझे फिर से एक सवाल पूछना है। हम जब भी सुनते हैं भगवान हमारे साथ है तो हमारे मन में एक बहुत ही शांति देने वाली छवि बनती है।
हाँ, बिल्कुल,
हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अहाज के परिस्थितियों को देखते हुए क्या भगवान हमारे साथ है का संदेश उसके लिए कोई खुशी की बात थी?
यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हम इम्मानुएल को क्रिसमस के कार्ड्स पर छापते हैं और खुश होते हैं, लेकिन अहाज के लिए उस क्षण में भगवान का साथ होना एक भयानक और खौफनाक खबर थी।
क्यों? भगवान का साथ होना खौफनाक कैसे हो सकता है?
क्योंकि अहाज ने भगवान के बजाय असीरिया को अपनी ढाल बनाया था।
ओहो,
भगवान उसे बता रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक न्यायकर्ता के रूप में। भगवान ने साफ शब्दों में कहा कि असीरिया कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो एक किराए का उस्तरा है।
किराए का उस्तरा?
हाँ, आहाज को लगा कि उसने असीरिया को किराए पर लिया है, लेकिन असल में भगवान उस उस्तरे का इस्तेमाल यहूदा को पूरी तरह से मूंढने यानी तबाह करने के लिए करने वाले थे।
वाह, किराए का उस्तरा, ये उपमा तो बहुत ही तीखी है। और मुझे याद आ रहा है डॉक्टर ऑसवर्ल्ड ने यूनानी अनुवादों की एक बहुत ही मजेदार गलती का जिक्र किया था। पाठ्यालोचना यानी टेक्स्ट क्रिटिसिज्म का वो किस्सा बड़ा ही हास्यास्पद था।
हाँ, वो अनुवाद की दुनिया की एक बहुत ही मशहूर और दिलचस्प गलती है। हिब्रू भाषा में किराए पर लेना के लिए जो शब्द है वो है शहार,
और शराबी के लिए जो शब्द है वो है सहार।
मतलब सिर्फ एक साउंड का फर्क है।
हाँ, दोनों के उच्चारण में बजरा सा फर्क है। तो जब यूनानी अनुवाद किया जा रहा था तो किसी लिपिक ने गलती से किराए का उस्तरा की जगह शराबी उस्तरा लिख दिया।
हे भगवान, सोचिए एक शराबी इंसान उस्तरा लेकर आपकी हजामत बनाने आ रहा है, वो कहाँ बाल काटेगा और कहाँ आपकी गर्दन काट देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये विचार ही कितना डरावना है,
जिसे ये नहीं पता कि कहाँ रुकना है।
बिल्कुल, असीरिया भी एक ऐसी ही बेकाबू ताकत थी। वो सिर्फ इसराइल और सीरिया को काटकर रुकने वाली नहीं थी, वो अपना उस्तरा लेकर यहूदा की तरफ भी बढ़ने वाली थी।
ये हमें एक बहुत ही कड़वा सच सिखाता है। हम जिस चीज पर अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आत्मा दांव पर लगा देते हैं, जिस गलत चीज पर हम भरोसा करते हैं, अक्सर वही चीज पलट कर हमारा गला रेत देती है।
एकदम सही।
ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है, ये तो इंसानियत का इतिहास है। और डॉक्टर ओसवाल्ड बताते हैं कि कैसे ठीक 34 साल बाद असीरिया की वही विशाल सेना यहूदा पर हमला करने आ पहुंची। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब असीरिया का सेनापति यहूदा से आत्मसमर्पण की मांग कर रहा था, तो वो यरूशलेम में ठीक उसी ऊपरी कुंड के पास खड़ा था जहां यशाया ने आहाज को चेतावनी दी थी।
टुकराया था
उसी जगह पर 34 साल बाद उसकी अपनी चुनी हुई बर्बादी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी।
ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है।
आहाज ने असीरिया पर भरोसा किया और उसी असीरिया ने उसके राज्य का खून चूस लिया। जब हम अपनी घबराहट में भगवान के अलावा किसी भी और चीज को अपना रक्षक मान लेते हैं, तो वो रक्षक अंततः हमारा सबसे बड़ा फंदा बन जाता है।
तो इस भयानक पतन की कहानी से हम आज के राजनैतिक और सामाजिक उथल पुथल वाले माहौल के लिए क्या सबक ले सकते हैं? यशाया के अध्याय 8 में हम उनके एक और बेटे के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम काफी लंबा और डरावना है, महेर शलाला हाशबज,
जिसका अगर हम अनुवाद करें तो अर्थ होता है विनाश बहुत तेजी से आ रहा है या लूट जल्दी होने वाली है।
सही। और इस संदर्भ में भगवान यशाया को एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें आम लोगों की तरह राजनीतिक साजिशों या जिसे हम आज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है हमें इस बिंदु पर थोड़ी देर रुकना चाहिए। आज के समय में जब भी कोई महामारी आती है, युद्ध होता है या आर्थिक मंदी आती है, तो हम इंसान तुरंत साजिश की कहानियों में क्यों उलझ जाते हैं? क्या ये भी आहाजा वाले डर का ही एक आधुनिक रूप है?
मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। जब दुनिया में अस्त व्यस्तता होती है तो लोगों को ये महसूस होता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है।
हाँ, पैनिक होने लगता है।
बिल्कुल, इंसान के लिए ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि इतिहास यूं ही बेतरतीब ढंग से चल रहा है। इसलिए साजिश की कहानियों पर विश्वास करना असल में इस बात से बचने का एक तरीका है। लोगों को ये सोचना ज्यादा सुकून देता है कि हाँ, दुनिया में तबाही मची है, लेकिन कम से कम कुछ लोग तो हैं जो बंद कमरों में बैठकर इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं।
मतलब कोई तो स्टीयरिंग व्हील पर है, चाहे वो विलेन ही क्यों ना हो।
हाँ, चाहे वे बुरे लोग ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम कोई तो कंट्रोल में है। साजिशों से डरना ये दिखाता है कि हमें लगता है कि ईश्वर सो रहा है और दुनिया कुछ गुप्त संगठनों के हाथ में है।
लेकिन भगवान यशाया से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो इस सामूहिक पागलपन का हिस्सा ना बने। भगवान कहते हैं कि साजिशों से डरने के बजाय सेनाओं के भगवान को पवित्र मानो।
यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान को पवित्र मानने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें कोई नई चीज दे रहे हैं।
तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि हम उन्हें उनके सही स्थान पर रख रहे हैं, उन्हें सर्वोच्च शासक मान रहे हैं। डॉक्टर ओसवाल्ट ने यहाँ अपना एक बहुत ही सुंदर और व्यक्तिगत अनुभव साझा किया था जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है।
हाँ, मुझे याद है।
उन्होंने बताया कि जब वे किशोर थे तो वे अपने माता पिता द्वारा दी जाने वाली किसी सजा से नहीं डरते थे। उनका डर ये होता था कि कहीं वे कोई ऐसा काम न कर दें जिससे उनके माता पिता का उन पर से भरोसा उठ जाए।
यह उदाहरण बहुत ही सटीक है। ये एक स्वस्थ और सम्मानजनक डर है, ना कि कोई आतंक।
बिल्कुल, ईश्वर का भय मानने का यही अर्थ है। ये इस बात का आतंक नहीं है कि भगवान आसमान से बिजली गिराकर हमें भस्म कर देंगे। ये इस बात का डर है कि हम उस पवित्र रिश्ते को ठेस ना पहुंचाएं। जब इंसान भगवान को सिर्फ एक ऐसा जरिया मान लेता है जो मुसीबत आने पर हमारी मदद करे,
बिल्कुल किसी अलादीन के जिन की तरह,
हाँ, तो हम उनकी पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम उन्हें सच में इतिहास का नियंत्रक मानते हैं, तो दुनिया की सारी साजिशें, सारे राजनीतिक उथल पुथल बौने लगने लगते हैं।
सही बात है।
भगवान आपके लिए या तो एक शरण स्थान बनेंगे जहां आप हर तूफान में सुरक्षित रहेंगे, या फिर वे आपके लिए एक फंदा बनेंगे अगर आप खुद को ही अपना भगवान मानने लगेंगे।
तो जो लोग ये तय करते हैं कि वे ईश्वर को अपना शरण स्थान नहीं मानेंगे, जो लोग अपनी अकल और अपनी साजिश की कहानियों पर ही भरोसा करना चुनते हैं, उनकी परिणति क्या होती है?
उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसे आज के दौर में दार्शनिक उत्तर आधुनिकतावाद या पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद का मूल विचार ये है कि दुनिया में कोई परम सत्य नहीं है, हर व्यक्ति का अपना अलग सच है। डॉक्टर ओसवाल्ड कहते हैं कि जब आप उस परम सत्य, उस अंतिम रोशनी को ठुकरा देते हैं, तो आप असल में खुद को एक अंतहीन अंधकार में धकेल देते हैं
जहाँ कोई दिशा नहीं होती।
बिल्कुल, जब कोई दिशा तय करने वाला सूरज ही नहीं बचा तो इंसान सिर्फ भटकता रहता है। आज के समय में लोग अर्थ और दिशा की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने मूल सत्य को नकार दिया है, उन्हें केवल निराशा, अवसाद और अंधकार ही मिलता है।
ये तो बहुत दुखद है।
इसलिए जब दुनिया में उथल पुथल मची हो, तो हमारा एकमात्र काम ये नहीं है कि हम भविष्यवाणियां करें या साजिशों को सुलझाएं। हमारा एकमात्र काम है वफादार रहना। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, हमें बस अपना काम ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना है।
ये सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली और झकझोर देने वाला संदेश है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के सभी धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने क्या देखा? हमने राजा आहास के उस राजनीतिक खौफ को देखा, कैसे उसने घबराहट में भगवान के बजाय अपनी दौलत और दुनिया के सबसे क्रूर साम्राज्य पर दांव लगाया। हमने इमानुएल के उस गहरे और दोहरे अर्थ को समझा जहां एक बच्ची की उम्र एक उल्टी गिनती थी।
बिल्कुल।
और सबसे अहम बात, हमने इंसान के स्वभाव का वो शाश्वत नियम देखा कि हमारा गलत जगह रखा गया विश्वास, हमारी वो गलत ढाल ही अंततः पलटकर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है।
और मैं कहूंगी कि जो भी श्रोता आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए सोचने का एक बहुत बड़ा अवसर है।
हाँ, बिल्कुल।
जब हम आज की दुनिया में सूचनाओं की बाढ़ देखते हैं, डराने वाली न्यूज हेडलाइंस पढ़ते हैं और भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, तो हम अपनी मानसिक शांति कैसे बनाए रखते हैं? क्या हम आहाज की तरह साजिशों और भविष्य के डर से घिरे हुए हैं, या हम इस बात पर पूरी तरह भरोसा करके वफादारी से अपना काम कर रहे हैं कि इतिहास का नियंत्रण आज भी उसी परम शक्ति के हाथों में है?
यही वो असली सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना है। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो शायद आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। अगर ये ऐतिहासिक सच है कि भगवान की जगह हम अपनी सुरक्षा के लिए जिस भी चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही चीज अंततः हमें भीतर से खोखला कर देती है, तो सोचिए आज के इस आधुनिक जीवन में हमारा अपना असीरिया क्या है।
ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है।
क्या ये हमारी पल पल की अपडेट देने वाली टेक्नोलॉजी है जिसे हम अपनी तन्हाई दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं,
या शायद हमारा बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस है?
हाँ, जिसे हम अपनी हर चिंता का इलाज मानते हैं, या शायद हमारी पद प्रतिष्ठा है जिसे हम भविष्य के डर से बचने के लिए एक तरह से रिश्वत दे रहे हैं।
हम सोच रहे हैं कि ये चीजें हमें दुनिया के थपेड़ों से बचाएंगी।
लेकिन क्या ये संभव है कि ये वही किराए के उस्तरे हों जो चुपचाप भीतर ही भीतर हमारी ही जड़ें काट रहे हों? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।